लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर विनय गुड़िया के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं।
तूने मुझे बुलाया प्रभु, आया मैं तेरे द्वार।
कलीसिया के इतिहास में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी याद बड़ी श्रद्धा से की जाती है, क्योंकि उन्होंने कलीसिया और समाज के लिए अपना बड़ा योगदान दिया है। कैथोलिक कलीसिया की भाषा में उन्हें संत कहा जाता है। फ्रांस में जन्मे संत सेसार दे बुस उन 10 महान संतों में से एक हैं, जिन्हें संत पापा फ्रांसिस ने 15 मई 2022 को संत पेद्रुस महागिरचक्र के प्रांगण में संत घोषित किया। संत सेसार दे बुस ने धर्म शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता महसूस करते हुए क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन धर्म समाज की स्थापना की। संत पापा पॉल षष्ठम ने फादर सेसार की धर्म शिक्षा की शैली की मौलिकता से प्रभावित होकर 27 अप्रैल 1975 को उन्हें कलीसिया में धर्म शिक्षकों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। आज कलीसिया में धर्म शिक्षा पर पुनः जोर दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि इंटरनेट एवं मोबाइल के जमाने में युवा सहज ही भ्रमित होकर भटक सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन धर्म समाज के सदस्य अपने संस्थापक संत सेसार दे बुस के पद चिन्हों पर चलते हुए जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं एवं युवाओं की मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है फादर विनय गुड़िया, जो आज हमें अपने धर्म समाज से अवगत कराते हुए अपने संस्थापक से परिचय करा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है फादर विनय गुड़िया के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
तो मैं फादर का हार्दिक स्वागत करती हूँ संत पापा के रेडियो में। और इस भेंट वार्ता में आगे बढ़ने के पूर्व हमारे श्रोताओं के लिए उनका परिचय उनके हिस्से मुख से सुनना चाहेंगे।
सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर को मुझे प्रदान करने के लिए। मेरा नाम फादर विनय गुड़िया है और मेरा पैतृक स्थल झारखंड राज्य के खूंटी जिले के अंतर्गत तोरपा नामक स्थान है तथा क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन धर्म समाज से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान समय में मुझे उत्तरी इटली के तुरिन नामक स्थान में एक सहायक पल्ली पुरोहित तथा युवा संचालक का कार्यभार सौंपा गया है। यह मेरा एक संक्षिप्त परिचय था।
धन्यवाद फादर। और इसके साथ ही मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपका धर्म समाज जो आपने बतलाया उसका छोटा परिचय दें और किस तरह यह कलीसिया एवं विश्व को अपना योगदान दे रहा है।
बहुत अच्छी बात है। हमारे धर्म समाज का नाम क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन फादर्स है, जिसकी स्थापना 29 सितंबर 1592 ईस्वी को दक्षिणी फ्रांस में अविंयों महाप्रांत के अंतर्गत इल सुरला सोर्ग द्वीप पर हुआ है। इसके संस्थापक संत सेसार दे बुस हैं। स्थापना के बाद इतिहास में धर्म समाज को सुख और दुख दोनों प्रकार के अनुभवों, परंतु विशेषकर फ्रांस की क्रांति के बाद काफी कष्टदायक ऐतिहासिक घटनाओं से उबरना पड़ा है। आज हमारा धर्म समाज इटली, फ्रांस, ब्राजील, भारत और बुरुंडी में कार्यरत है। यह विशेषकर इस वचन को दूसरों तक सुनाने के लिए धर्म शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान दे रहा है तथा मानवता से जुड़े अन्य प्रेरित कार्य जैसे पल्ली, स्कूल, युवा, परिवार संचालन, पुस्तक प्रकाशन तथा परोपकार के विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से कार्य रहा है।
तो भारत में आपका धर्म समाज किस तरह योगदान दे रहा है?
भारत में विशेषकर रांची महाधर्म प्रांत में हम 1999 ईस्वी से कार्यरत हैं। यदि कुछ खास गतिविधियों की बात करें तो सुदूर इलाके में हमारे किंडरगार्टन, प्राथमिक और उच्च विद्यालय के स्कूल है, जहां लगभग 50 गांवों के बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके पास शिक्षा पाने के कम साधन हैं। ये स्कूल पर्यावरण और आर्थिक संपोषण के मद्देनजर छात्रों और उनके परिवारों को लघु उद्यमिता के उदाहरण देने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ हमारा एक डिस्पेंसरी है जहाँ एक नर्स की निरंतर उपस्थिति और सप्ताह में एक बार एक डॉक्टर की उपस्थिति के साथ लघु चिकित्सा केंद्र के रूप में आसपास के गांवों के जरूरतमंद लोगों को स्वतंत्र रूप से सेवा देता है। दवा और इलाज निशुल्क है। इसके अलावा एक छोटी स्वास्थ्य टीम आसपास के गांवों में प्रतिदिन बारी बारी से दौरा करते हुए परामर्श व दवाइयां पहुंचाती है और इस प्रकार यह टीम लोगों को डिस्पेंसरी की सुविधा मुहैया कराती है। जबकि रांची शहर में उन बच्चों के लिए हमारे एक ऐसा स्कूल है जो शुरुआती वर्षों में अपनी सामान्य पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर वैसे बच्चे जिन्हें परिवार की आर्थिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिलता है, वैसे बच्चों को पहली साक्षरता दिलाने के बाद इन्हें शहर के सबसे योग्य स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है। अध्ययन में इनकी देखरेख की जाती है, स्कूल के खर्चों का वहन किया जाता है और दैनिक गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। शहर में ही चेसर सिलाई सेंटर नामक हमारा एक सिलाई और कढ़ाई का स्कूल है जिसका उद्देश्य गरीब बेरोजगार महिलाओं को पेशेवर बनाना है। एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है जो रोजगार की तैयारी में युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ कंप्यूटर सीखने का अवसर प्रदान करता है। युवाओं के लिए एक पुस्तकालय सह अध्ययन कक्ष है जो विश्वविद्यालय के परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अध्ययन करने की निरंतर सेवा प्रदान करता है। फिर युवाओं को नौकरी की प्रतियोगिताओं में तैयार करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है।
तो शदे फादर विनय गुड़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य समय के लिए, आपके इन सुंदर वचनों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके मिशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
तूने मुझे बुलाया प्रभु, आया मैं तेरे द्वार, तेरे कदमों पे चलूंगा मैं, बस दे दे तेरा प्यार। तूने मुझे बुलाया प्रभु, आया मैं तेरे द्वार, तेरे कदमों पे चलूंगा मैं, बस दे दे तेरा प्यार। तूने मुझे बुलाया प्रभु,
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका समय की पाबंदी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, सभी को एक दिन में 24 घंटे समान मिलते हैं, लेकिन उपयोग करने का तरीका हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। समय एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय का प्रबंधन सफलता की ओर पहला कदम है। समय का सही उपयोग करने का मतलब है अपने जीवन के हर पल का सही उपयोग करना। समय प्रबंधन सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वे युवा हों, बड़े हों या वरिष्ठ नागरिक हों। कहा जाता है, समय उन्हें महत्व देता है जो समय को महत्व देते हैं। अच्छे काम के लिए समय का सदुपयोग करना आपको अच्छे परिणाम देगा, और अगर आप इसे बुरे काम में इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको निश्चित रूप से बुरा परिणाम देगा। हमें समय का महत्व तब पता चलता है जब हमारे पास वास्तव में इसकी कमी होती है। एक छात्र परीक्षा देते समय प्रत्येक मिनट के मूल्य को महसूस कर सकता है। नौकरी चाहने वाले को समय की कीमत तब महसूस होती है जब उसे कुछ मिनट देर से आने के लिए खारिज कर दिया जाता है। यही कुछ मिनट उसे जीवन भर के लिए समय की कद्र करना सिखा देता है। जी हाँ, समय हमारे जीवन की कुंजी है। चाहे सुख हो, दुख हो, सफलता हो, असफलता हो, सब कुछ परोक्ष रूप से समय पर निर्भर है। समय के साथ समय के मूल्य को समझना आवश्यक है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका समय की पाबंदी।
आजकल की लड़कियां बात बात पर झूठ बोलती है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटलों में, मॉल्स में जाकर शराब पीती हैं और दूसरों को बुरा समझकर नाक भौं सिकोड़ती हैं। तुम इसे अकलमंदी समझती और कहती हो? लड़कियों का शरीर और दिमाग भगवान ने किसी भी नशे के लायक नहीं बनाया।
अरे भैया, मैं तो सिर्फ अकलमंदी की बात कर रही
हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। क्या शराब पीना और अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाना, या उन्हें धोखा देना और कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड बदलना, बस यही अकलमंदी आजकल की लड़कियों की है ना?
अच्छा चलो प्रथम भैया, हम इस बात पर फिर कभी बात करेंगे। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा कहीं इंटरव्यू था ना नौकरी के लिए?
अरे हाँ यार, है तो सही। टाइम क्या हुआ अभी?
9:45। और तुम्हारा इंटरव्यू कितने बजे है?
अरे इंटरव्यू तो 11 बजे से है यार।
तुम कमाल करते हो प्रथम भैया, 11 बजे से तुम्हारा इंटरव्यू है और तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, तो इंटरव्यू के स्पॉट पर कब पहुँचोगे?
देखो इस लड़की को, तभी तो मुझे तुम लोगों की अकल पर तरस आता है। अरे इंटरव्यू मेरा है और परेशान तुम हो रही हो। मुझे पता है सब, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा।
इंटरव्यू कहाँ है तुम्हारा?
अपोलो टावर में।
तो तुम क्या समझते हो भैया, अपोलो टावर यहाँ से पास में है?
तुझे पता है ना कि मेरे पास मोटरसाइकिल है।
तो उससे क्या, भागम भाग करके जाने से तो अच्छा है कि समय से थोड़ा सा पहले निकलो और समय पर पहुंचो।
तू हर समय ये समय समय क्या करती रहती है? समय को तो अपनी पॉकेट में रखता हूँ मैं, समझी?
रितु, ओ रितु,
क्या है मम्मी?
अरे ये क्या प्रथम, 11 बजे तेरा इंटरव्यू है और 10 बज रहे हैं, फिर भी तू यही है? अरे बेटा, तू इंटरव्यू के लिए कब निकलेगा?
मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरव्यू मेरा है और समय से निकलना और समय पर पहुंचने की फिक्र आप लोगों को क्यों हो रही है?
क्योंकि तुझे समय की फिक्र ही नहीं रहती है। तू समय की कद्र करना नहीं जानता है। तू तो कहीं भी न तो समय पर पहुंचता है और न ही समय पर घर आता है।
बिल्कुल सही है मम्मी, जब भी मैंने इसे सोनाली के घर से मुझे लाने के लिए कहा है, ये कभी भी टाइम पर नहीं आता है। या तो लेट आया है या फिर मुझे ऑटो से आना पड़ता है।
चल चल, अब मम्मी के सामने ज्यादा मत फेंक। मम्मी आजकल यह ना कुछ ज्यादा ही फेंकने लगी है।
बेटा मैंने तुझे पैदा किया है और मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, आखिर तू समय की कद्र करना कब सीखेगा?
सही बात तो ये है मम्मी कि समय के बारे में मेरी फिलॉसफी जरा अलग ही है। आखिर हम समय के गुलाम क्यों बन रहे हैं? जरा समय को भी तो अपने हिसाब से चलाकर घुमा फिरा कर देखें जरा कैसा लगता है।
हाँ मम्मी, यह ऐसा ही कहता है और कहता है कि मैं समय को अपने जेब में रख के घूमता हूँ।
ठीक है, मगर अब तो निकल, जाते समय हो ही जाएगा।
अरे वहाँ पहुँचकर पहले से उन बंदरों का मुंह कौन देखेगा मम्मी?
अब तू जाता है या नहीं?
अरे जाता जाता हूँ भाई, लेकिन इस तरह तो घर से मत निकालो कम से कम।
अच्छा भैया, बाय, ऑल द बेस्ट,
भगवान तुझे सफलता दे बेटा।
थैंक यू रितु, थैंक यू मम्मी, चलता हूँ।
फास्ट मत जाना भैया।
मम्मी ये प्रथम भैया ने ना जाने कैसी आदत बना रखी है, अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है, आखिर में पहुंचता है।
तो सही कहती है बेटी, ये लड़का ना जाने कब सुधरेगा, और सुधरेगा भी या नहीं।
मुझे तो भैया के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते मम्मी।
आज आने दे उसे, मैं बात करती हूँ।
लो मैं आ गया मम्मी। लगता है आप दोनों की बातचीत का टॉपिक यह गरीब नवाजी है। क्यों रितु,
तेरे खाने वाने का कोई टाइम है या नहीं है?
मम्मी आदमी को जब भूख होगी तभी तो वो खाना खाएगा, या फिर भूख न होने के बाद भी सिर्फ घड़ी देख कर ही खाना खा लेगा।
हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से, समझ में नहीं आता इसका करूँ तो क्या करूँ मैं।
कुछ मत करो और बस खाना परोस दो आप।
अरे उस दिन भी मैंने और रितु ने तुझसे कितना कहा था कि समय हो रहा है इंटरव्यू का, जल्दी निकल जा, मगर तू नहीं माना और अपने मन की ही की। वहाँ तब पहुँचा जब इंटरव्यू खत्म हो चुका था।
अरे तो आप क्या समझती हो मम्मी, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र निकल गई है। अरे अभी तो मैं यंग हूँ और अभी मेरी उम्र बाकी है, अभी तो मुझे ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे।
और ऐसे बहुत से मौकों को तुम गंवाते रहना।
सुना मम्मी आपने, यह अभी से मुझे बद्दुआ दे रही है।
वो सब छोड़, तेरे पापा ने तेरे लिए कहीं पर नौकरी की बात की है, कल समय से पहुंच जाना मुझसे एड्रेस लेकर। तेरी नौकरी तो पक्की है, तेरे पापा ने बात कर ली है, कम से कम उनकी तो लाज रखना बेटा।
मम्मी मैं इतना गया बीता भी नहीं हूँ कि अब मुझे सिफारिश से नौकरी करनी पड़ेगी।
मुझे चिंता इस बात की नहीं है, मुझे तो चिंता इस बात की है कि नौकरी मिलने के बाद भी तू समय से नौकरी पर पहुंचेगा या नहीं।
मुझे भी ऐसा ही लगता है मम्मी।
मम्मी की चमची तू चुप कर,
कल समय से चले जाना बेटा। बेटी रितु, अभी तक प्रथम आया नहीं, अब तक तो उसे आ जाना था।
मम्मी आप भी क्या बात करती हैं, प्रथम भैया आज तक कभी समय पर आया गया है जो अब आ जाएगा?
मगर आज तो सुबह से मैंने उसे समय से ही भेजा था।
ओहो तो उस नालायक का इंतजार हो रहा है। मुझसे सुन लो, उस नालायक के हाथ से वह नौकरी भी चली गई है, क्योंकि तुम्हारे साहबजादे वहां भी लेट ही पहुंचे थे।
आपको कैसे पता?
मेरी वहां के एमडी से बात हो गई है। लो आ गए तुम्हारे साहबजादे।
मैं जानता हूं पापा, मैंने आप सभी का दिल दुखाया है, अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे आज समय की कीमत पता चल चुकी है, मैंने अपने आप से वादा किया है कि अब मैं समय की कदर करूंगा, समय के हिसाब से चलूंगा और समय का पाबंद रहूंगा, हमेशा समय की पाबंदी का ख्याल रखूंगा पापा।
मेरी बात याद रखना बेटा, समय का सब इंतजार करते हैं, समय किसी का कभी इंतजार नहीं करता, हमेशा समय के साथ चलने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन में उन्नति करते हैं।
सुन लिया भैया?
हाँ बेटा, मुझे खुशी है कि आज ईश्वर ने मुझे यह शुभ दिन भी दिखाया कि तू समय की कद्र करना सीख गया है।
समय की पाबंदी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या शूलिया, नलिनी गहलोत, निर्विकार मूल्य और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।